选择，我选择爱去带着给你爸爸呢，还没把我家里家里是全部的人我的中国अपने भाग्य की भी जानकारी दी है। बाबा ने कहा कि बच्चे आप भाग्यशाली हो। फिर बीच में बाबा ने प्रश्न भी पूछा है, भाग्यशाली जो है वो बाबा को बता दें कि हम भाग्यशाली, बताओ ना हाथ खड़ा करके। लेकिन बाबा ने कहा भाग्यशाली हो या सौभाग्यशाली है, बोलते जाओ। फिर तीसरी बात बाबा ने कहा कि करोड़ भाग्यशाली, नहीं तीसरी बात बाबा ने कहा हजार भाग्यशाली हो, कभी बोला हजार भाग्यशाली, भाग्यशाली सौभाग्यशाली, सौभाग्य में सौ भाग्यशाली, मतलब सौ मीन्स यू, सौ मीन्स 100%। तीसरा बाबा ने कहा 1000 भाग्यशाली हो, जो कि हम 1000 भाग्यशाली हाथ खड़ा करें, बस थोड़े, अरे 1000 सौ से ऊपर 1000 है, वो भी आधा ही हो गया है ना, तो 100 से ऊपर 1000 है, और जो कहते करोड़ भाग्यशाली वो भी आधे, थोड़े से हैं करोड़ वाले, अभी तक बनाया नहीं है ना, और जो कहते हैं हम अरब भाग्यशाली वो भी 4-5 है, और जो कहते हैं हम खरब भाग्यशाली वो भी 8-10, बस इतना ही है, केवल पहली स्टेज पर पहुंचे हैं भाग्यशाली, अभी दूसरी स्टेज तो लिया ही नहीं है। लेकिन बाबा को कहना पड़ता है भाग्यशाली भी हो, सौभाग्यशाली भी हो, 1000 भाग्यशाली भी हो, करोड़ भाग्यशाली भी हो, अरब भाग्यशाली भी हो, और खरब भाग्यशाली, और पद्मा परम भी भाग्यशाली हो। और दूसरी बात बाबा ने कहा, दुनिया में वैष्णव है वो खान पान की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, लेकिन तुम सच्चे वैष्णव हो, खान पान की शुद्धि के साथ साथ तुम बच्चे विशेष अपने जीवन की जो मुख्य धारणा है पवित्रता को भी धारण करते हो। तीसरी बात बाबा ने कही, जैसे बाबा क्या करते हैं, अपकारियों पर उपकार करते हैं, भक्ति में बाबा को कितनी गाली दिया सर्वव्यापी कह करके, फिर भी बाबा आकर के बच्चों पर उपकार करते हैं, तो तुम बच्चों को भी क्या करना है, सबका उपकार करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, बहुत मीठा बनना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 12 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, सच्चे वैष्णव भोज, सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज का प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। इसका उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह भी कई प्रकार का होता है, सूक्ष्म भी होता है, बाहरी रूप भी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती है, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास उसे याद करते रहते, दुनिया में क्या करते हैं, हाँ वो करते रहते हैं, 12 मास तक उसे याद करते रहेंगे, कुछ न कुछ करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो ओहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। कभी बाबा कहते आत्मा समझ करके बाप को याद करो, बाबा कहते कभी बाबा नहीं सर्व संबंध याद करो। मुख्य बात ये है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान का सागर होने के कारण टीचर भी है। पहला बाबा ने कहा आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप के साथ साथ किसको याद करना, ज्ञान के सागर टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है और सदगति दाता भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर, फिर बाबा क्या बता रहे हैं, बाप टीचर पति पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा के, और अभी है संगम युग में। ब्रह्मा है रचना शिव बाबा की, वो कब होता है, अभी है संगम युग पे। एम एंड ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, बाबा कहते कैसे सिद्ध करना है, हमको अडॉप्ट किया हमारा बाप है, राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर भी हुआ ना, तो टीचर भी सिद्ध हुआ। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठे ये पक्का करो, बाबा पक्का कराते थे कैसे कैसे दूसरों को समझाना है, तो बाबा कहते यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। ये अंदर धारणा होनी चाहिए, ये तो जानते हो कोई को जास्ती धारणा होती है और कोई को कम। बाबा कहते ये तो पता ही है, खुद को भी पता है बाबा को भी पता है, कोई को बहुत जास्ती धारणा होती है और कोई को कम होती है। ये तो जानती हूँ कोई को जास्ती धारणा होती है कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में टिके जाते हैं उनका नाम होता है। अभी भी ऐसा होता है ज्ञान में होशियार होते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे हमारी दादियां उनका नाम होता है, ये पद भी ऊंचा होता है। प्लीज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते। खान पान की वेट परहेज तो है ही है, साथ साथ बाबा ने जो पहला नियम बनाया पवित्रता की भी पक्की धारणा, इसलिए बाबा कहते तुम कौन हो, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते दुनिया में वो उसको समझते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती है, लौकिक में तमोगुणी चीजें क्या वो भी जानते हैं, उससे बाबा हमेशा परहेज भी कराते हैं। तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं, कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड अथवा भगत कहा जाता है, सन्यासियों को कहेंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो बाबा कहते जो वेजिटेरियन बाहर वाले वो क्या मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमो प्रधान चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि तमो प्रधान चीजें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड अथवा भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहा जाता है पुण्य आत्मा। सन्यासी घर बार छोड़ करके पवित्र बनते हैं तो पवित्र आत्मा कहलाते हैं, लेकिन दान पुण्य करने वाले जो होते परिवार में रहते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान पुण्य आदि करते हैं उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा और पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा को कोई निर्लेप नहीं है, ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। शुरू में बाबा ने पक्का कराया बच्चों को कैसे आपको याद करना है, कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, तो बाबा एक एक पॉइंट बताते थे। ऐसे ऐसे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा तो नहीं कहा जाता है ना, तो सर्वव्यापी कहना भी रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं और सब में आत्मा है, सभी आत्माएं हैं और हर एक के अंदर आत्मा है। महान परमात्मा नहीं कहा जाता तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं। बाबा कहते जितना ये ज्ञान की स्टडी करेंगे तो औरों को सिद्ध करके भी तो बतला सकते ना। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं। झाड़ में भी आत्मा है, झाड़ में कुछ ना कुछ है जो धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना, वो आत्मा के वो संस्कार है जो बोल सके, लेकिन उसके अंदर एक्सप्रेशन और वो है जो उसके भाव जो है उससे आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं झाड़ में भी आत्मा है, कहते 84 लाख योनियां हैं जो उसमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाते। मनुष्य की जो आत्मा है वो जड़ में जा नहीं सकती, जड़ पदार्थों में जो सेंसेशन है वो अलग प्रकार का, लेकिन बाबा क्या कहते जो मनुष्य की आत्मा है वो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, इंद्र को से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। कहानी आती ना कि इंद्रप्रस्थ में एक इंद्र सभा थी और एक परी किसको लाई तो फिर उसको श्राप दिया वो पत्थर बन गया। तो कहती है ना इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो, बस तुम्हारी 84 जन्म अब पूरे हुए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना कि पवित्र धाम कौन सा है, अपवित्र धाम कौन सा है। तो बाबा कहते ये तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे, अभी तो गाते रहते महिमा करते रहते हैं। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है भी ऐसे। बाबा कहते गाते तो जरूर हैं और गाते हैं, वास्तव में रियलिटी है कि पहले गुणवान थे अभी तो कोई गुण रहा ही नहीं। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है भी ऐसे, कोई गुण नहीं है। मनुष्य में वो भी बहुत रहता है, मरे हुए की याद रहती है, बुद्धि में आता है जब मेरे बच्चे हैं। दुनिया में तो जाओ क्या हाल होता है, जाता है कोई तो उसके लिए रोते रहते 12 मास ऐसी हालत होती है, अपनी सारी स्थिति को बिगाड़ देते ना, तुमको याद आता रहता है, बुद्धि में आता ये मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चे मरे तुमको याद करते रहेंगे, इससे 12 मास तक तो अच्छी रीति याद कर। क्या क्या करती है पहले भक्ति, पहले टाइम तो बहुत होता था, क्या क्या करती रहती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम, बाबा बता रहे हैं कि वो तो मुंह ढक करके रोती है, ऐसे मुंह ढक करके अगर तुम बाप को याद करो तो क्या हो जाएगा। मुंह ढक करके रोती रहती है, ऐसे मुंह ढक करके याद करो तो दिन रात ही बेड़ा पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे तुम पति को याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बहुत बतलाते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। पोता मैं देखते हैं कि आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते। दुनिया में बिजनेसमैन क्या करते, अपना पोता मेल देखते हैं, बैलेंस निकालते ना, कोई कोई मास मास का बैलेंस निकालते हैं। यहाँ तो वह भी बहुत जरूरी है, दोनों प्रकार का, सुस्थूल और सूक्ष्म, यहाँ तो वह भी बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है, बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी क्या हो बताओ, सौभाग्यशाली बताओ, बाबा को सौभाग्यशाली नहीं है ना, अच्छा 1000 भाग्यशाली वो भी नहीं, करोड़ भाग्यशाली वो भी नहीं, पदम पदम में भी आधे हैं, अच्छा अरब अरब में तो बिल्कुल ही कम है, खरब खरब में भी 20-25 वर्ष अभी बने ही नहीं है ना, जमा हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते तुम सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। अपने भाग्य के लिए खुशी की ताली तो बजाओ, पदम अरब खरब। अब कितना बड़ा टाइटल मिल गया, पदम अरब खरब भाग्यशाली। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे, सौभाग्यशाली के निशानी वह बाप को याद करेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है ही याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करे या पूछे कि तुम मुझे याद करते हो। अब बाप को कौन के याद नहीं करता, उसको पता है बाप से मिलने वाला है। लौकिक बाप थोड़े बच्चों को कहता है कि तुम मुझे याद करते हो, तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो व पूछे कि मुझे याद करते हो। यहाँ तो बाबा को बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा को पूछना नहीं पड़ता, अपनी स्टेज को खुद ही समझ आते हैं। बाप बच्चों को, बच्चा बाप को याद करता ही है, फिक्स है, बाप बच्चों को और बच्चा बाप को याद करता ही है, ये तो ला है। यहाँ पूछना पड़ता है, क्यों बाबा पूछते, क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए ना, इसलिए बाबा भी चित्र बनवाते रहते हैं, वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू कर, बाबा कहते थे कहीं भी जाओ बाबा का चित्र लेकर के जाओ और पहले पहले बाबा की महिमा सुनो। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से चित्रों पर समझाते रहते, हमने ये प्रदर्शनी बनाई, हमने ये बनाई, उसको समझाते रहते, बाबा कौन है पहले उसका परिचय कम देते हैं, इसलिए बाबा पक्का कराते कि पहले पहले बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा भी है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है बाबा। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जब तक कि बाबा ना ज्ञान दे। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता है। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है, वह त्रिकालदर्शी बन के क्या करेंगे? अगर वो त्रिकालदर्शी बन जाए उनको पता रहे कि हमारे गिरने वाले फिर गिरेंगे कलयुग अंत तक जाके और गिरेंगे, तो उनकी खुशी गायब हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनकर क्या करेंगे, तुम बनते हो और बनाते। संगम ये ऐसा टाइम है जिसके अंदर त्रिकालदर्शी बनते भी हैं और बनाते हो। ये लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा से चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना, पढ़ाई पे ध्यान देना है, बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच की ऊंच पढ़ाई संगम पर होती है, पर तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो फिर क्या होता, माया भी पहले से तैयार बैठी रहती। बाबा कहते तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, तो माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब ही विनाश की तैयारी होगी। कितना गहरा कनेक्शन, संपन्न बनेंगे, अभी बीच बीच में बन तो जाते ना, विनाश चलता ही रहता थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाबा कहते अब सब बच्चे 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो विनाश की तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी करो। वो विनाश के लिए क्या क्या कर रहे हो, तुम बच्चे अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे। कौरव और पांडवों की लड़ाई लगी ही नहीं, कौरव और यादवों की लगती है, कौरव पांडव की नहीं, कौरव और यादवों की लगती है। पद ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, उसमें पार्टीशन हो गया था ना, वह भी तब शुरू हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम बाबा के बच्चे बने और ये इस प्रकार से स्थिति आ गई। वह भी तब शुरू हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं, सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ के लिए तो कहती हैं रक्त की नदियां बहती हैं, क्योंकि यहाँ सिविल वार हो जाती है ना, तो बस फिर घी की नदियां बहेंगी। अब भी देखो कितना लड़ते रहते, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है, अब वह क्या करे, लड़ते हैं, कहेंगे ना ये रास्ता है, हमारे को पानी लेना है, इधर से फ्लाई करना है, इधर से जाना है, वो जाने नहीं देते, फिर आपस में मिल करके एग्रीमेंट करते हैं। तो बाबा कहते अभी भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास ना करो, ये हमारा रास्ता है, अब वह क्या करे। स्टीमर कैसे जाएगा, सागर है एक देश से दूसरे देश जाना है, तो कहेगा आधा सागर हमारा आधा सागर आपका है, तो फिर बाबा कहते हैं स्टीमर कैसे जाएंगे। फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नूंद है। अभी बाप कहते हैं मीठी बच्ची बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। अब भट्टी वाले क्या सुना, बोलो बाबा ने आपके लिए बोला है, यहाँ बैठती है तो बाबा की याद में खुशी में नाचेंगे, सब कुछ याद रहेगा। फिर बाबा क्या कहते हैं, माया क्या करती हो तो पता ही है, लेकिन बाबा ने क्या कहा बोलो, यहाँ से जाने में घर में जाने में बाबा को भूल नहीं, बोलो हम भूलेंगे ही नहीं, ये बोलो ना, पर ये थोड़ी बोलना भूल नहीं जाना, फेंकेंगे भूल गए, कौन भूलेंगे नहीं बाबा को बताओ है? यहाँ से जाएंगे बाबा की याद में, खुशी में रहेंगे और सदा बाबा को याद करके अपना साथी बना के चलेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हैं तो उनके बंधन में रहना पड़ता। कई कई आते हैं छोटे छोटे बच्चे, एक साल दो साल तीन साल चार पांच साल वालों को ले आते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, क्लास में बैठेंगे फिर सारा दिन शरारत करते हैं। तो बाबा को लगता था कि बच्चे छोटे जो आते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर कोई भी बच्चा नहीं आया, सब बड़े आए हैं, मैच्योर आए हैं। तो बाबा इस बात का ध्यान खिंचवाते थे कि जिस काम के लिए आए पहले उस पे कंसंट्रेट करें। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कई छोटे छोटे बच्चे थे बाबा के टाइम पर आए, आज तो बड़े बड़े होकर के कितनी सेवा कर रहे हैं। कई बच्चे फिर ऐसे भी निकले थोड़े शरारती, लेकिन कई बच्चे पूर्ण बाबा के बन के भी चले, ऐसे भी बच्चे हैं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है, यहाँ आते हो कमाई जमा करने। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो ज्ञान के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा। बाबा कहते हैं यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने, गाते भी है ना, झोली तो भर गई है ना, देखना ध्यान रखना कहीं झोली में छेद ना हो जाए, गाते भी है ना, भोलानाथ भर दो झोली। भगत तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, फिर वह शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं, तो महादेव बड़ा हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से ही मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी निशानी है, उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छी पढ़ाई कौन करता, तुम कहेंगे मम्मा बाबा हुँ? तुम कहेंगे मम्मा बाबा के मैनर्स बहुत अच्छे हैं। वह फिर हो गई बड़ी मम्मा, कौन, ब्रह्मा बाबा क्या है, बड़ी मम्मा। वह फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं, माता पिता कंबाइंड है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बात है, अब किसको कहो कि ये माता पिता है, कोई मानेगा? तो बाबा कहते कितनी गुप्त बात है, जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती हैं। उनको एडॉप्ट किया, सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। मम्मा जब आई बहुत मैच्योर, बहुत समझदार, हर कार्य को एक्यूरेसी से करती थी, तब बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया, सरस्वती। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम दिया। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का, वो तो सुना ना कलकत्ता की तरफ, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना, तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना ही नहीं। अब बाबा को याद करना, बाबा तो सबको देखते, हर एक आत्मा को देखते, याद हम बच्चों को बाबा को करना है। बाबा कहते उनको तो तुम बच्चों को याद करना ही नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना। शिव बाबा क्या कह रहे, ब्रह्मा की आत्मा को बाप को याद करना है, लेकिन मुझे थोड़ी याद करना है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। दो बातें, पहले बाबा ने कहा शिव बाबा बच्चों को देखते, बच्चों को याद नहीं करना। बाबा फिर क्या करते, दोनों ही बाबा भी ब्रह्मा बाबा दोनों बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। फिर ब्रह्मा बाबा बता रहे मुझे आत्मा को साक्षी होके नहीं देखना है, लेकिन शिव बाबा के संग में मैं भी बच्चों को साक्षी होके देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना, बाबा को बहुत नशा रहता था कि मैं बाबा के साथ रहता हूँ, जो शिव बाबा करते हैं मैं वैसे ही सीखने आता हूँ, और मैं भी साथ साथ बाबा के साथ करता हूँ। और शिव बाबा को भी अच्छा लगता था कि जो मैं करता हूँ ये भी वैसा ही करे। तो बाबा कहते हैं मैं तो बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। अब दादी के साथ जो चलते थे, दादी देख रही है साथ में, जो देख रहे हैं वो भी, तो जो दादी देख रही है साथ वाले भी देखते हैं कि कैसे दादी देख रही है। भल सबका अटेंशन दादी पर होता था, दूसरे भी देखते थे कि कैसे वो अपनी भावना से दादी से सब कुछ ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो मैं बाप के साथ रहता हूँ ना, उनके साथ रहता हूँ तो साथ में देखता भी हूँ, मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। सुनो कितना नशा, शिव बाबा सब कर रहे हैं और ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ जाता था। देखो मैं विश्व का मालिक बन के घूमता हूँ, है विश्व का मालिक वो बनाने वाला, लेकिन उसके साथ होने के कारण मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यही करता हूँ। कितनी अच्छी बात, बाबा को होता था भल शिव बाबा कर रहा है, अनुभव क्या होता था, जैसे कि मैं ये करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, देही सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बाप और बच्चा एक जैसे हो जाते, दो होते हुए भी एक हो जाते। अब कहते बाप दादा मिस दोनों साथ है ना, तो बाबा कहते हैं बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका अर्थ भी समझना, कैसे बाबा ने किया तुम बच्चों को भी करना, इसका अर्थ भी समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसकी भी नहीं सुनो, कई तरह के तरीके बताएंगे, बाबा को ऐसे याद करना है, बाबा को ऐसे याद करना है। अरे ये कोई पूछने की बात है कि बाबा को कैसे याद करना है, तो नए नए चार्ट बनाते रहते हैं, नहीं फलाने ने हमको बताया था ऐसा लिखो, फलाने ने बताया था ऐसा लिखो, ना वो लिखेंगे ना वो लिख पाएंगे ना बाबा को याद करे। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो बताया है उसके स्नेह में खो जाओ, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं घर में माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना, सर्विस करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे, तो फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका अर्थ समझना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसकी भी नहीं सुनो, कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराती रहो तो वह आप पे ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो उन पर तुम क्या करो, अब वास्तव में से मत करना, उस पर फूल चढ़ा दो। बाबा तो कहते हैं, बाबा तो कर ही देते थे, लेकिन बच्चों को क्या करना है, अपनी स्थिति को हल्का रखना है और मुस्कुरा देना है। तो बाबा कहते हैं कोई, तो बाबा बता रहे हैं बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली दी है, तुम मैं सबका उपकारी हूँ, तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो, तुम ख्याल करो हम क्या थे और अभी क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा याद दिलाते पक्का करो कि हम क्या थे और अभी क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब भी नहीं था, कभी था मन से कोई ख्याल में था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से सब कुछ थोड़ी होता है। साक्षात्कार हुआ, बाबा ने उनको अनुभव कराया, बाकी उससे थोड़ी ऊंच पद पा लेते, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। साक्षात्कार इसलिए हुआ, धीरे धीरे बाबा के बच्चे बने तो फिर बाबा के बच्चे बनके ये परिवार बढ़ता गया। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, ये नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, सचिव में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने ही है। पहले देवी देवताओं का राज्य था, फिर से वही आएगा, चक्कर फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे। कौन लेंगे? हम ही तो लेंगे ना, 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहां से जाएंगी? बाबा कहते हैं 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहां जाएंगी? ब्रह्मा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती, ये चक्र फिरता ही रहता है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। आत्मा अनादि अविनाशी है, न घटती बढ़ती न छोटी बड़ी होती, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बहन मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे, और नोट करो, बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, घर में जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माँ क्या कहते, बच्चे लड़ो नहीं, माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है, वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हो। बाप कहते हैं ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा, तुमको आए हैं इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए। फिर बाबा कहते तुम आए हो इस मृत्यु लोक में, लौटना नहीं है, उस यात्रा में तो लौट कर आते हैं और फिर वैसे के वैसे बन। जब यात्रा करते हैं तो कई नियम पालन करते हैं, फिर जैसे वापिस आए फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, उस यात्रा में तो लौट कर आते हैं फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग तो होगा ही ना, ये चक्र फिरना ही है, दुनिया एक है, बाकी स्थान्स आदि में कोई भी दुनिया नहीं, दुनिया केवल स्थूल वतन है, बाकी स्थान्स आदि में कोई दुनिया नहीं, कोई जीवन नहीं। तो बाबा कहते हैं बाकी स्थान्स आदि में कोई दुनिया नहीं, ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते, अभी जाते भी हैं, रिसर्च करते हैं, बोलते बहुत पानी मिलेगा, ये पदार्थ मिलेंगे, रिसर्च तो कर रहे हैं, तब तक क्या होगा, सृष्टि के अंदर उथल पथल हो जाएगी, जो भी रिसर्च किया वो तो वहां की वहां रह जाएगी ना। तो बाबा कहते हैं ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते, माथा मारते मारते मौत आ जाएगा। ड्रामा का सीन ऐसा है, पूरी रिसर्च भी होगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अंत का दृश्य क्या हो जाएगा, माथा मारते मारते मौत आ जाएगा। ये सब है साइंस, ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, जाएंगे क्या होगा, रिसर्च कर लेंगे ना, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी हो गई, एक तरफ बहुत इन्वेंशन, बहुत कुछ क्रिएटिव काम, और दूसरी तरफ बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। तो बाबा कहते देखो मनुष्य की बुद्धि कैसी है, समझते भी हैं, कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है, ये वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे, बाबा बता रहे समय कौन सा चल रहा है, ये वही महाभारत लड़ाई का है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे हो ना, बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ना, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडजेस कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं, परंतु राधा को इतना नहीं, राधा को कभी भी नहीं कहेंगे गॉडजेस, कृष्ण को कहेंगे गॉड। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधा को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह भी तो तुम ही तो हो ना। अब इतने नाम देवी देवताओं पर रखते हैं तो बाबा कहते हो कौन है, वह भी तुम ही तो हो ना। देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला है जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं तो फॉलो फादर करना है। कोई कुछ भी बोले तो सुना अनसुना कर देना है। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से सुनना है। दूसरा सुखदायी बन सबको सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज का वरदान सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते जाते जरूर हैं, लहरों के साथ लहराते भी अनुभव करते हैं, लेकिन गहराई का अनुभव कम होता ना। तो बाबा कहते हैं अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब ज्ञान सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभवों के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। आज का व्यक्ति शहर जो टाइटल चल रहा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर शेष सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची, ये संकल्प की रचना भी कोई कम नहीं, बहुत थोड़े थे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना ली और बाकी सब तो बाद वाले ना, तो बाबा कहते संकल्पों की रचना कोई कम नहीं है, आप सभी को ब्रह्मा बाबा ने संकल्प से रचा है, ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न धर्मों के पदों से निकाल समीप लाया। बाबा बता रहे श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरक कर भिन्न धर्मों के पर्दों से निकालकर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्प धारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, वेस्ट में नहीं करो ना, अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे आदरणीय डीजी जी की विशेषता। आज है बारह तारीख, आज है बारह तारीख, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय, अगर कोई अपनी गलती सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो वह उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। दीदी जी स्वयं भी अंदर बाहर स्वच्छ, बाहर भी स्वच्छ, अपनी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। उनका स्वयं पर पूरा ध्यान था, अमृत वेले से लेकर श्रीमत सिर माथे। ऐसे ही हम सबको सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति बनना है। आज फिर मैं एक और भी सुना रही हूँ दीदी की, वो है चौथा नंबर का। अच्छा, चौथा नंबर का है, नंबर वन गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर वन स्टूडेंट बनकर आप सबको, सबकी टीचर बने। दीदी पढ़ाई में बहुत एक्यूरेट थी, दीदी के पास हमेशा डायरी रहती थी, मुरली के पॉइंट्स लिखती थी, फिर उसके बाद सबको पूछती थी, बहुतों को फेल भी कर देती थी। मुरली सुनी याद है या नहीं है, तो दीदी की बात बता रहे, आप लौकिक में स्कूल में पढ़ाई नहीं की, लेकिन भगवान का नंबर वन स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं आई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था, बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनमें से बहुत अच्छे गृह प्रश्न भी निकालती और सबको इससे रिफ्रेश करती। ये जो आजकल मुरली में प्रश्न आते हैं, शुरू से ये दीदी ने स्टार्ट किया था, दीदी ने स्टार्ट किया था, प्रश्न निकालती थी, पूछती थी, फिर मुरली में लिखते थे, फिर दीदी ने राजू भाई को ड्यूटी दी कि हर मुरली में प्रश्न कैसे निकालना है, और अभी तो राजू भाई इतने अच्छे प्रश्न निकालते जिसमें सारा स्थान भी समा जाता है। तो दीदी बता, किसी के पत्रों का उत्तर देते समय दीदी बाबा के कुछ महावाक्यों पर उस पत्र में जरूर लिखती थी। हमें याद है कोई भी पत्र ऐसे नहीं लिखने देती, पहले बाबा के महावाक्य लिखो फिर किसी का पत्र का जवाब देना है तो पहले वो महावाक्य जरूर होना। कहा ये सुखा सुखा क्यों लिखते हो, कोई भी बैठती थी, हम लोग बैठते थे दीदी के साथ पत्र लिखते तो दीदी कहती सुखा पत्र, अभी तो केवल जवाब देते ना, पहले ज्ञान की पॉइंट लिखो। फिर दीदी के टाइम पर ज्ञान की पॉइंट्स की टाइप करके उस पर लगाते थे, लिखा होता था, फिर दीदी का सुनाते थे, पत्र का जवाब देते थे। किसी के पत्रों का उत्तर देते समय दीदी बाबा के कुछ महावाक्य उस पत्र में जरूर लिखती। हमें भी सदा स्टूडेंट लाइफ में रहना है, लक्ष्य रहे जब तक जीना है तब तक सीखना है। बाबा के महावाक्य ही हमारी पढ़ाई है, उस पर पूरा ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी एक सूचना है मृत्युंजय भाई की तरफ से। अच्छा, मृत्युंजय भाई ने एक समाज सोशल विंग की तरफ से रक्तदान शिविर के लिए, जो कि पूरे भारत के अंदर आयोजित करना है, उसकी रूपरेखा क्या रहेगी, तो आज शाम को 6:30 बजे शांति वन में दादी मीटिंग हॉल में रखा गया है, जिसमें मधुबन के सीनियर भाई बहने, डिपार्टमेंट के इंचार्ज भाई बहने जा सकते हैं, क्योंकि जिनको इस फील्ड में सेवा करनी है और भी जो इंटरेस्टेड है वो भी शाम को 6:30 बजे शांति वन के दादी मीटिंग हॉल में पहुंचे, जहां पर पूरे भारत में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत उस कार्यक्रम की रूपरेखा बनानी है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, बट्टी के वह भाई बहने जो आज जा रहे हाथ खड़ा करें, ठीक है, और जो दोपहर को जा रहे हैं, ठीक है, जो शाम को जा रहे हैं, अच्छा, जो कल जा रहे हैं, अच्छा, और कोई है जो परसों जाने वाला हो, नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।